तो आज बहुत ही विशेष दिन है, आज श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का तिरुभाव दिवस है। तो वैष्णवों के जो आविर्भाव और तिरुभाव हैं वो दोनों ही दरअसल एक बम्पर ऑफर की तरह है, जहाँ पर बहुत ही बहुत कृपा हमें प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इन दिनों पर हम इन आचार्यों को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, हम इनसे कृपा की याचना कर सकते हैं और भक्ति सीख सकते हैं। जैसा कि जब भी भक्ति की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि लोगों को ये धारणा है कि अगर भक्ति है, भक्ति का कोई मार्ग है, तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही आरामदायक है ना? डिवोशनल सर्विस, भक्ति का जो मार्ग है वो जैसे कैसे है, जैसे सॉफ्ट बेड ऑफ फ्लावर्स है ना, बहुत ही आरामदायक। अभी एक बार किसी एक व्यक्ति से मिले थे, तो वो किसी और संस्था के थे, तो वो कह रहे थे भाई ठीक है आप सब भक्ति में आए हैं, पर भक्ति में आने के बाद इतनी सारी टेंशन क्यों है ना, भक्ति में आने के बाद इतने कष्ट क्यों, भक्ति का मतलब क्या है, बिल्कुल सॉफ्ट बेड है ना, बिल्कुल आरामदायक जीवन बीते, किसी प्रकार का कोई दुख ना आए, सब चीजें बहुत अच्छी रहें। पर शास्त्र और आचार्यों की जो शिक्षाएं हैं वो ये बताती हैं कि जो भक्ति का मार्ग है वो रास्ता है, डिवोशनल सर्विस का अल्टीमेट गोल जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं है ना, परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, पर ये जो रास्ता है ये कांटों से भरा हुआ है। और इस रास्ते में विशेष रूप से कलयुग में हम देखते हैं कई कई कांटे है ना, कई कई मुसीबतें जो भक्तों के जीवन में आती हैं। और हालांकि भक्त जानते भी हैं इस बात को कि इस रास्ते में कई मुसीबतें आएंगी है ना, क्योंकि अगर आप किसी कटीली झाड़ियों में हाथ डालेंगे तो निश्चित रूप से आपका हाथ कटेगा। और ये जो कटीली झाड़ियां हैं, यहां पर जानवर भी हैं इस युग में, और जहरीले सांप हैं, और संभावना यही है कि सांप काट सकता है या कोई जानवर खा जाएगा या जो झाड़ियां हैं वो चुभेंगी। पर फिर भी इन सब चीजों के जानने के बाद भी जो भक्त हैं, जो इससे जो इसे इस मार्ग को, इस रास्ते को छोड़ते नहीं है कभी भी, इसे हमेशा पकड़ के रखते हैं। और यही जो तरीका है करने का, ये जो उत्साह है उनका करने का, यही धीरे धीरे करके इसी में उत्साह, ये लक्षण बनता है, एक सिम्टम बनता है, कैरेक्टरिस्टिक बनता है आचार्य का, कि जब भी जीवन में स्थितियां ऐसी आए जो हो सकता है हमारे लिए बहुत फेवरेबल ना हो, हमें देखने में ऐसा लग रहा हो कि बहुत कष्ट आ रहे हैं, बहुत दुख आ रहे हैं, पर वो जो आचार्य हैं कभी भी उस मार्ग को त्यागता नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, इवन इफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इवन इफ ऑल द गॉडलेस पीपल ऑफ द काउंटलेस यूनिवर्स, चाहे जितने भी लोग हैं इस ब्रह्मांड के, सब इकट्ठे हो जाएं एंड अब्यूज मी विद हार्श लैंग्वेज और मुझे गाली दें, मेरे से गलत व्यवहार करें, आई विल एक्सेप्ट इट एंड बोल्डली कंटिन्यू टू डिक्लेयर द ट्रुथ, मैं से स्वीकार करूंगा और जो ट्रुथ है, सत्यता है, इसका प्रचार जारी रखूंगा। इफ द टॉपिक्स ऑफ रियलिटी एंटर द ईयर्स ऑफ इवन अ सिंगल पर्सन अमंग मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस, ये जो परम सत्य है ये करोड़ों करोड़ लोगों में से, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में से अगर किसी एक व्यक्ति के भी कान में चले जाएगा और अगर वो कृष्ण की ओर उन्मुख हुआ एंड दस रिमूव द कंटामिनेशन ऑफ द चीटिंग प्रोपेंसिटी फ्रॉम द हार्ट, और उसके हृदय से जो धोखा देने की प्रवृत्ति है अगर वो निकल जाएगी, देन आई विल थिंक दैट आई हैव बीन एबल टू फुलफिल महाप्रभु मिशन, तो मैं ये सोचूंगा कि जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है वो मैंने पूरा किया है। और श्री भक्तिविनोद ठाकुर भी इसी संदर्भ में बताते हैं, श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अ प्रीचर ब्रिंग्स मोर बेनिफिट टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड देन दोज हु अकॉर्डिंग टू देयर ओन टेस्ट निग्लेक्ट प्रीचिंग वर्क बाय एब्जॉर्बिंग देमसेल्व्स इन द ब्लिस ऑफ देयर ओन भजन। कुछ लोग भजन के नाम से जो प्रचार का कार्य है वो छोड़ देते हैं, कुछ लोग इसलिए प्रचार का कार्य छोड़ देते हैं कि हम क्यों मुसीबत लें, हमें क्या पड़ी अपनी मुसीबत लेने की, हम अपने जीवन में हैं, घर में हैं, आराम सुखपूर्वक रह रहे हैं, सुखपूर्वक जीवन चल रहा है, हमें क्या पड़ी है किसी की, अपने बारे में सोचें। तो ये जो सेल्फिश, ये जो मोटिव है, दरअसल एक आचार्य का लक्षण नहीं है। एक आचार्य अपने बारे में नहीं सोचता, बाकियों के बारे में सोचता है, और इसी कारण से हो सकता है उसके जीवन में कई कष्ट आए पर आचार्य कभी ड्रॉप नहीं करता। जैसा कि प्रहलाद महाराज के जीवन में तब तक कोई मुसीबत नहीं आई थी जब तक वो प्रीचर नहीं बने थे, तब तक तो उनके पिता हिरण्यकश्यप उनसे बहुत प्रेम करते थे, जब तक वो प्रचारक नहीं थे। पर जैसे ही वो प्रचारक बने, उन्होंने बोल्ड प्रीचिंग शुरू की, तो उनके जो पिता, स्वयं के पिता, देखिए पिता का संबंध ऐसा होता है बच्चों के साथ, माता पिता का, कि उसका जो काला बेटा है ना, बदसूरत है, वो भी उससे कैसा लगता है, मोल्टन गोल्ड है ना, स्वर्ण वर्ण का रखता है, उसको बहुत सुंदर लगता है उसका, उसका अंधा बच्चा भी उसको कमल लोचन लगता है। तो ये माता पिता का सिम्टम होता है। पर क्योंकि वो बच्चा प्रचारक बन गया और उसके विरोध में प्रचार कर रहा है, तो अब प्रहलाद महाराज के जीवन में हर प्रकार के कष्ट आने शुरू हुए। तो यही हम देख सकते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के चरित्र में, कि किस प्रकार से रामानुजाचार्य ने अपना प्रचार शुरू किया और किस प्रकार से रामानुजाचार्य के जीवन में भी कई प्रकार के ऐसे ही संघर्ष आए। तो दरअसल जो रामानुजाचार्य थे, ये केशव आचार्य और कांतिमती के पुत्र थे। केशव आचार्य और कांतिमती बहुत ही पायस व्यक्ति थे, बहुत ही पुण्यवान थे और भक्ति के अंगों का बहुत सख्ती से पालन करते थे, बहुत तपस्या करते थे, और उनकी एकमात्र इच्छा यही थी कि उनका पुत्र हो, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो जब इस प्रकार वो तपस्या कर रहे थे इस प्रकार, तो स्वयं पारसारथी भगवान उनके सामने प्रकट हुए और भगवान ने उनको बोला कि मैं आपकी जो भी इच्छा है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। पर साथ साथ, क्योंकि भारतवर्ष में सनातन धर्म का प्रचार हमेशा ही फैला है और सनातन धर्म का भी अब क्या है, अब पोस्ट खंडन करने वाले बहुत सारे लोग पैदा हो गए थे, जो भक्ति का क्या कर रहे थे, खंडन कर रहे थे अलग अलग तर्कों के माध्यम से, और जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना, इसे ढका जा रहा था। तो भगवान ने क्या किया, जो अपनी शक्ति है संकर्षण, उनको भेजा, वो प्रकट हुए। और जब संकर्षण प्रकट हुए, तो जो कांतिमती है, उनकी जो बहन है शैलापूर्ण, उनके जो गुरु है यमुनाचार्य, जब उनको पता लगा कि बहुत ही अद्भुत बालक प्रकट हुआ है, बहुत ही सुंदर है ना, वो बालक कैसा था, जैसे ज्वेल हीरे के समान था है ना, चमकदार एकदम। तो यमुनाचार्य की भी इच्छा हुई, मैं जाऊं उस बालक को देखूं कैसा है वो बालक। तो यमुनाचार्य पूरी इच्छा लेके उस बालक के दर्शन करने के लिए आए, और जब यमुनाचार्य ने बालक के दर्शन किए, तो उन्होंने क्या देखा कि इस बालक में सारे सिम्टम्स कैसे हैं, लक्ष्मण के समान है, राम के छोटे भाई के समान। तो उन्होंने इस बालक का नाम क्या रखा, लक्ष्मण। रामानुजाचार्य नाम इनका बाद में पड़ा था। तो ये जो रामानुजाचार्य थे, लक्ष्मण थे, ये बचपन से ही बहुत भक्ति वाले थे। जो भक्त लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि ठीक है बड़े हुए एकदम से और फिर उन्होंने भक्ति के कुछ सिम्टम प्रकट किए ना। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जब छोटे से थे तो क्या करते थे, प्रभुपाद रथ यात्रा निकालते थे, बचपन से अपनी भक्ति के जो सिम्टम है, प्रचार के सिम्टम उन्होंने दिखाने शुरू किए थे, सेवा के सिम्टम। इसी प्रकार से रामानुजाचार्य भी बचपन से उनकी बहुत आसक्ति थी सेवा में, और सेवा के साथ साथ वैष्णवों का संग करने में और वैष्णवों की सेवा करने में, खाली भगवान की सेवा नहीं। तो इसी प्रकार से एक भक्त थे कांचीपुर, जो कांचीपुरम में रहते थे, एक भक्त थे कांचीपुर जो कांचीपुरम में रहते थे और ये जो भक्त थे, ये निरंतर रूप से वरदराज जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। और जब दर्शन करने जाते थे वरदराज के, तो इनका जो मार्ग था मंदिर का, जो इनके घर से कांचीपुरम के घर से मंदिर तक का, ये केशव आचार्य के घर के सामने से निकलता था। और रोज लक्ष्मण रामानुजाचार्य देखते थे इस भक्त को जाते हुए दर्शन करने के लिए, और कितने भक्ति भाव से जाते हुए। तो निश्चित रूप से लक्ष्मण, क्योंकि वो खुद भी भक्त थे, वो समझ गए कि ये कोई आम भक्त नहीं है। हालांकि ये जो कांचीपुरम थे, इनका जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ था, पर शूद्र परिवार में जन्म लेने के बाद भी इनके अंदर जो भक्ति के सिम्टम थे, उससे रामानुजाचार्य ने ये साबित करना चाहते थे कि जो भक्त हैं उनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते उनकी जाति के बेसिस पे, है ना, ये ऊंची जाति के, ये नीची जाति के हैं। तो एक बार लक्ष्मण ने क्या किया कि जब उनके माता पिता घर में नहीं थे और कांचीपुरम उनके घर के सामने से निकल के जा रहे थे, तो उनको घर में बुलाया, उनको बुलाया, उनकी सेवा की, उनको प्रसाद सर्व किया, उनके पैर धोए और अलग अलग तरीके से उनकी सेवा करने लगे। तो कांचीपुरम को भी हैरानगी हो रही थी, कांचीपुरम ये सोच रहे थे कि, कांचीपुरम ने उनको बोला कि मैं तो एक शूद्र परिवार में जन्म लिया हूं, आप मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं, माई डियर सर, अ वैष्णव इज नेवर अ शूद्र. एक जो वैष्णव है वो कभी भी शूद्र नहीं होता. एक्चुअली अ वैष्णव इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ इवन अ ब्राह्मण. जो वैष्णव है वो ब्राह्मण का भी गुरु होता है. तो दरअसल लक्ष्मण ये दिखाना चाहते थे कि किसी भी जात के बेसिस पे हम भक्तों को कैटेगराइज नहीं कर सकते. तो इसी प्रकार से जो लक्ष्मण थे, जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता का देहांत हो गया, केशव आचार्य का. और जब केशव आचार्य का देहांत हुआ तो लक्ष्मण की इच्छा थी कि वो शास्त्रों को पढ़े, वैदिक शास्त्रों को. तो जब ये पढ़ने की उनकी इच्छा हुई, वैदिक शास्त्रों को पढ़ने की, तो उन्होंने एक गुरु अपनाए उन शास्त्रों को पढ़ने के लिए, मंत्र सीखने के लिए. और जब मंत्र सीखने के लिए गुरु बनाए उन्होंने, तो ये गुरु से नियमित रूप से मंत्र सीखा करते थे. तो एक बार क्या हुआ कि जब अपने गुरु से मंत्र सीख रहे थे, तो वहां का जो राजा था, उस राजा की खबर आई ना, जो कांची का राजा था, वहां उसने यदु आचार्य को ये न्यूज भिजवाई कि उनकी जो बेटी है, सुपुत्री, उसको भूत उसके ऊपर चढ़ गया है. तो जब ये खबर सुनी तो जो यादव आचार्य हैं वो लक्ष्मण के साथ गए उसके घर में, उस भूत को उतारने के लिए. और जब भूत को उतारने के लिए पहुंचे वहां पर, और जैसे ही उस व्यक्ति के, उस इस लड़की के सामने पहुंचे, तो उस लड़की के अंदर से भूत चिल्लाने लगा ना. वो भूत क्या बोला कि तू मेरे शरीर से भूत निकालेगा, तेरी औकात ही क्या है. पिछले जन्म में एक अछूत था, किसी ना किसी प्रकार से एक वैष्णव का झूठा खाने के लिए मिल गया, और तेरे को गुरु की पदवी मिल गई है ना. तू मेरे अंदर से भूत, तू मुझे, मेरा उद्धार नहीं कर सकता. अगर मेरा उद्धार करना चाहता है तो ये जो पीछे तेरा शिष्य खड़ा है ना, लक्ष्मण, इसको बोल, अगर ये अपने चरणों का अमृत है ना, पैरों को धोकर वो पानी अगर मेरे ऊपर डालेगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा. अब वो यादव आचार्य भी क्या कर सकते थे, क्योंकि राजा की पुत्री थी और राजा भी सामने था, तो उनको लक्ष्मण को आगे करना पड़ा. तो इससे क्या हुआ, जो यादव आचार्य थे इनके अंदर एक ईर्ष्या द्वेष पैदा हुई. नेचुरली अगर किसी के सामने, अगर एक बड़े सीनियर के सामने अगर छोटे का प्रेस होने लगता है, तो उसको बड़ा वो लगने लगता है ना, घबराहट सी फीलिंग होने लगती है ना, सफोकेटेड फील करता है. तो यादव आचार्य को भी यही हुआ, ऐसी फीलिंग आने लगी. तो ना चाहते भी हुए भी उसके अंदर ये ईर्ष्या भाव की जो टेंडेंसी थी ये उगने लगी. तो एक बार क्या हुआ, लक्ष्मण यादव आचार्य की मसाज कर रहे थे, और मसाज करते हुए एक शिष्य ने पूछा, दूसरे शिष्य ने यादव आचार्य से पूछा कि जो शास्त्रों में बताया गया है कपयासम ना, कपयासम पुंडरीकाक्षम, इसका अर्थ क्या है. तो यादव आचार्य ने क्या किया, शंकराचार्य की कमेंट्री से कोट किया कि कपयासम पुंडरीकाक्ष क्या मतलब है, कि जो भगवान के नेत्र हैं, जो भगवान के सुंदर नेत्र हैं, वो किस प्रकार से लाल है, लाइक एन एनस ऑफ अ मंकी, है ना, एक बंदर के गुदे के समान लाल है. तो जब ये सुना लक्ष्मण ने, तो उनको बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि भगवान के रूप की अगर तुलना की जा रही है तो किस चीज से तुलना की जा रही है. अब हालांकि उनके गुरु थे तो वो खुद तो कुछ बोल नहीं सकते थे, तो रोने लगे, चुपचाप रोने लगे. और गरम गरम आंसू जब उनके शरीर आंखों से टपक रहे थे, तो ये यादव आचार्य के शरीर पे पड़े, है ना. तो यादव आचार्य ने पूछा उनसे कि आप क्यों रो रहे हो. तो इसने बताया कि देखिए, आपने जो कमेंट्री बताई है, आपने जो ये डेफिनेशन दी है भगवान के नेत्रों की, ये इससे मैं सहमत नहीं हूं. तो इस बात से यादव आचार्य बहुत क्रोधित हुए, है ना. यादव आचार्य उनको डांटने लगे कि तुम कितने घमंडी, कितने अहंकारी हो, कि तुम शंकराचार्य के जो टीका है उसमें भी गलती त्रुटि ढूंढ रहे हो. तो अगर तुम अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हो तो तुम बताओ क्या है, है ना. तो फिर लक्ष्मण ने क्या बताया कि जो कपयासम पुंडरीकाक्षम है, इसका मतलब क्या है, ब्लॉसम बाय द सन, जिस प्रकार से जब सूर्य उगता है तो जिस प्रकार से लाल होता है, कितना सुंदर लगता है वो लाल, तो भगवान के जो नेत्र हैं वो उस प्रकार से लाल है. अब जब ये सुना यादव आचार्य ने, तो उनको समझ आ गया कि भविष्य में ये व्यक्ति इतना बड़ा प्रचारक बनेगा कि शंकराचार्य के जितने सिद्धांत है उसका खंडन करेगा. यादव आचार्य पहचान गए थे उनको कि यही बड़ा होके शंकराचार्य के सारे सिद्धांतों का खंडन करेगा. और एक बार, क्योंकि अब ये दूसरा इंसिडेंट था यादव आचार्य के साथ, तो उनका जो ईर्ष्या द्वेष था वो और बढ़ चुका था पहले से. अब और आगे क्या हुआ कि एक बार यादव आचार्य एक प्रवचन दे रहे थे अपने शिष्यों को, और शिष्यों को जो प्रवचन दे रहे थे उसमें वो बता रहे थे कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है, है ना। जब ये कमेंट्री सुनी लक्ष्मण ने तो उनसे ये भी बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने साबित किया कि किस प्रकार से भगवान का रूप है और भगवान सुंदर है देखने में। इन्होंने पूरा स्थापित किया कि भगवान का पर्सनल एक फॉर्म है। और जब यादव आचार्य ने तीसरी बार ये सुना तो अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, अब उन्होंने सोचा कि अब लगता है मेरी गद्दी भी खतरे में है, है ना। क्योंकि जब किसी को अपनी पोस्ट का खतरा रहता है तो किसी ना किसी प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है सामने वाले व्यक्ति को गिराने की, है ना। अब ये व्यक्ति क्योंकि शास्त्रों में लक्ष्मण इतने निपुण थे, यादव आचार्य की कोई तरकीब चल नहीं रही थी, तो उन्होंने क्या किया, यादव आचार्य ने अब अपने शिष्य को मरवाने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी रची, है ना, एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र में उन्होंने जबरदस्ती लक्ष्मण को फोर्स किया कि आप मेरे साथ चलो प्रयाग में, प्रयाग में जो संगम है वहां पर हम स्नान करेंगे, आप चलो। और जब इस प्रकार से यादव आचार्य, लक्ष्मण और बाकी शिष्यगण जब जा रहे थे, श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री कृष्ण बलराम की, तो इस प्रकार से जब यादव आचार्य, लक्ष्मण और बाकी शिष्य जब जा रहे थे प्रयाग की ओर, तो रास्ते में जब एक जगह वो रुके तो लक्ष्मण के जो कजन भाई, एक भाई थे लक्ष्मण के जो यादव आचार्य से शिक्षाएं ले रहे थे, और एक शिष्य यादव आचार्य के, ये दोनों ने आके लक्ष्मण को बताया जो पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था लक्ष्मण को मारने का। तो जब लक्ष्मण को ये पता लगा तो लक्ष्मण ने क्या किया, चुपचाप रात को वहां से भाग गए। और भागे कहां से, जो जंगल का रास्ता है वहां से भागे। अब सोचिए एक छोटा बालक, एक छोटा बच्चा एक जंगल के रास्ते से भागा है तो कितना, मतलब किसी को भी डर लगेगा रात को, है ना। तो जब इस प्रकार से वो जंगल के रास्ते से भागे और रास्ते में थक गए थे क्योंकि समझ भी नहीं आ रहा था जाना कहां पर है, तो उन्होंने क्या सोचा कि एक पेड़ के नीचे रुक जाता हूं। तो जैसे ही पेड़ के नीचे वो रुके तो उन्होंने क्या देखा, एक शिकारी और शिकारी की पत्नी दोनों उस रास्ते से जा रहे थे। और उन्होंने पूछा इस बालक से कि आप कहां जा रहे हो, तो इस बालक ने बताया इस प्रकार से, मैं लक्ष्मण ने बताया कि मैं जाना चाहता हूं यहां पर, तो अभी रात है और रास्ता भी नहीं पता तो इसलिए मैं यहां पर रुक गया हूं। तो उस शिकारी ने क्या बोला कि हम लोग भी उसी रास्ते में जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। तो लक्ष्मण, वो शिकारी और शिकारी की पत्नी तीनों उस रास्ते से जाने लगे। अब देखिए अगर शिकारी साथ में जा रहा है तो किसी जानवर से डर लगेगा नहीं ना, कोई प्रॉब्लम है तो अपने आप निपट लेगा, तो बहुत निश्चिंत होकर जाने लगे। और रात को जब एक जगह, जब बहुत देर हो गई थी चलते हुए, तो एक जगह थोड़ी देर के लिए रुके और शिकारी की पत्नी को बहुत प्यास लगी। अब जब प्यास लगी तो लक्ष्मण ने बोला कि मैं पानी ले आता हूं ना। शिकारी ने क्या बोला, अभी बहुत रात है, अभी आप मत जाओ, जब थोड़ी रोशनी आ जाएगी तब चले जाना। तो जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई, लक्ष्मण उठे और कुएं से पानी लेने के लिए गए, तो अपने हाथ में पानी भर के लाते थे और शिकारी की पत्नी को पिलाते थे। एक बार पिलाया, फिर दोबारा गए कुएं से लेने के लिए, दूसरी बार, फिर तीसरी बार। जब चौथी बार पानी लेने के लिए जब कुएं में घुसे और बाहर निकले कुएं से, तो वो जंगल में नहीं थे, अपने गांव में थे, अपने घर के पास ना? और जब ये स्थिति उनके साथ हुई तो लक्ष्मण बहुत हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो गया। और लक्ष्मण ने किससे पूछा, अपने जिनको वो बहुत, जो कांचीपूर्ण थे, जिनको अपना मित्र मानते थे, शुद्ध भक्त मानते थे, कांचीपूर्ण को उन्होंने पूरी स्थिति बताई कि इस प्रकार से ऐसा हुआ और वो शिकारी और उसकी पत्नी गायब हो गए। तो कांचीपूर्ण ने क्या बताया कि दरअसल वो शिकारी और शिकारी की पत्नी नहीं थे, वो स्वयं लक्ष्मी और नारायण थे जो रात को आए थे आपकी रक्षा करने। तो दरअसल ये रामानुजाचार्य का संबंध था भगवान से, है ना। और भगवान इस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते क्लोजली जब भी भक्त संकट में आते हैं। तो जिस प्रकार से, जैसे माधवेंद्रपुरी के लिए जब भगवान ने खीर चुराई थी तो माधवेंद्रपुरी की ख्याति फैल गई थी, उसी प्रकार से लक्ष्मण की, रामानुजाचार्य की ख्याति भी फैलने लगी हर जगह। और जब ख्याति इतनी फैल रही थी तो ये ख्याति किसके पास पहुंची, यमुनाचार्य के पास। यमुनाचार्य ने इस बालक को नाम दिया था लक्ष्मण, और सिर्फ एक बार मिले थे। अब इनकी इच्छा हुई कि मैं मिलूं, इनसे भेंट करूं और भक्ति के बारे में और चर्चा करें, है ना, एक शुद्ध भक्त से मिला जाए। तो यमुनाचार्य वो इच्छा लेके आए कांचीपुरम में, और उन्होंने वरद राज के दर्शन किए और फिर वो लक्ष्मण से मिले। अब लक्ष्मण से मिलने के बाद वो लक्ष्मण को सीधा ये नहीं बोल सकते कि ठीक है लक्ष्मण, अब आप मेरे साथ चलो। उन्होंने क्या किया, अपने एक शिष्य को बोला कि आप लक्ष्मण को, पूर्णाचार्य को बोला कि आप लक्ष्मण को बाद में मेरे पास लेके आना। तो यमुनाचार्य चले गए और बाद में पूर्णाचार्य लक्ष्मण को लेकर जब यमुनाचार्य के पास आ रहे थे तो रस्ते में उनके पास एक खबर आई। क्या खबर आई कि यमुनाचार्य जो है वो उन्होंने डिसअपेयर हो गए, उनका तिरुभाव हो गया है। तो जब ये उन्होंने खबर सुनी तो उनको बहुत दुख हुआ, लक्ष्मण को बहुत दुख हुआ, उनके शिष्य पूर्णाचार्य को बहुत दुख हुआ। और इस दुख के साथ अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब क्या करेंगे, उन्होंने सोचा कि क्योंकि यमुनाचार्य का जो शरीर है उसको कोई स्मार्त ब्राह्मण छुए ना, इसलिए वो तुरंत दोनों भक्त भाग कर गए यमुनाचार्य के शरीर के पास, है ना, उनका देखने के लिए। और जब पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि यमुनाचार्य की 3 उंगलियां बंद हैं और 1 उंगली खुली हुई है केवल। तो ये किसी को समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा लक्ष्मण ने बाकी शिष्यों से कि हमेशा ऐसा था क्या, उन्होंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला, उनको समझ आ गया लक्ष्मण को कि इसके पीछे कुछ कोई कारण है इसके पीछे। तो लक्ष्मण ने क्या किया, उसके बाद शपथ लेनी शुरू की, है ना। लक्ष्मण ने क्या बोला, आई विल फॉलो द पाथ ऑफ श्री वैष्णविज्म, मैं वैष्णविज्म के जो रास्ता है इसका पालन करूंगा। आई विल अपलिफ्ट दोस हु आर बिविल्डर्ड बाय इग्नोरेंस बाय टीचिंग देम 5 संस्कारास, जो अज्ञानता के द्वारा भ्रमित है मैं उनको उनके स्तर से उठाऊंगा 5 संस्कार के माध्यम से। एंड आई विल एंगेज देम इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और मैं उनको क्या, भगवान की सेवा में लगाऊंगा। जब ये बात उन्होंने पहली शपथ ली तो जो यमुनाचार्य की 1 उंगली अपने आप खुल गई। अब उसके बाद उन्होंने दूसरी शपथ ली, क्या, आई विल कंपोज अ कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र नोन एज श्री भाष्य। तो जब ये दूसरी उन्होंने शपथ ली तो यमुनाचार्य की 1 और उंगली खुल गई। अब उन्होंने तीसरी शपथ ली, आई विल कंपाइल अ डिक्शनरी बेस्ड ऑन द फॉरमोस्ट पुराणास दैट डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड द लिविंग एंटिटीज। तो उन्होंने एक ऐसी डिक्शनरी बनाने का उन्होंने शपथ ली कि जिसमें जो भी पुराण है और भगवान के और जो जीव हैं इनके जो नेचर के बारे में बताया जाएगा, इस डिक्शनरी का रचन करने का, इसको लिखने के बारे में जब उन्होंने संकल्प किया तो यमुनाचार्य की जो तीसरी उंगली है जो बंद थी वो भी खुल गई। और जब ऐसा हुआ तो बाद में सभी जो वैष्णव वहां पर थे उनको समझ आ गया कि यही वैष्णव वो हैं जो आगे आके इसको संभालेंगे। तो जो लक्ष्मण है इसी प्रकार से श्री वैष्णविज्म के इसमें प्रचार में बहुत ही उत्साह से लगे थे। हालांकि वो भी विवाहित थे, और एक बार लक्ष्मण की जो पत्नी थी वो कुएं से पानी निकाल रही थी, और पूर्णाचार्य की पत्नी भी उस समय कुएं से पानी निकाल रही थी, तो पानी की कोई बूंद रस्सी से पूर्णाचार्य की पत्नी की जो बर्तन था उसके अंदर गिर गई। अब उस वो गिरने पे क्या हुआ कि रामानाचार्य की जो पत्नी थी उसने बहुत ही भर्त्सना करनी शुरू की, है ना, क्रिटिसाइज करना शुरू किया उनको। अब जब रामानाचार्य को पता लगा कि मेरी पत्नी ने इस प्रकार से अपमान किया है एक वैष्णव की पत्नी का, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो पत्नी है मेरे साथ, दरअसल ये असत्संग है, और इस असत्संग के होते हुए अगर मैं भक्ति करने का प्रयास करूंगा तो मैं भक्ति कभी नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या पहला तरीका है, असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार, है ना, असत्संग को त्यागो। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को त्याग दिया और अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित होकर उन्होंने श्री वैष्णविज्म का प्रचार करना शुरू किया। और जिस भी स्थान पर रामानाचार्य जाते थे मायावादी उनसे घबराते थे, डरते थे उनसे मायावादी, क्योंकि हर मायावादी के सारे सिद्धांतों का खंडन करते थे वो। जैसे मायावादियों का क्या सिद्धांत है कि अगर आपके पैर में कांटा चुभा है तो एक कांटे को कैसे निकाला जाता है, दूसरे कांटे से, है ना, सुई से निकालते हैं पैर में कांटा चुभ जाता तो जब पैर से कांटा निकल जाता है तो ना आपको दोनों में से किसी कांटे की जरूरत नहीं होती। तो उनका क्या सिद्धांत होता मायावादी का कि अभी हम जप कर रहे हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, अभी हमारे जरूरी है क्योंकि अभी हम ऊंचे स्तर पर नहीं आए, आगे नहीं बढ़े, है ना। जब हम उन्नत हो जाएंगे तो उसके बाद हमें ना अर्चा विग्रह की जरूरत है, ना जप की जरूरत है, ना वैष्णव की जरूरत है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से मायावादी जब अपना प्रचार करते थे और रामानाचार्य इन सब सिद्धांतों का खंडन करते थे, तो एक बार एक बहुत ही बड़े मायावादी स्कॉलर यज्ञ मूर्ति हर जगह जगह पर घूम रहे थे और सभी को क्या कर रहे हैं, मायावाद का प्रचार कर रहे थे। और जो अपने साथ चलते थे तो उनके पास एक पूरी बैलगाड़ी होती थी, वो पूरी बैलगाड़ी उन किताबों से भरी होती थी जिससे क्या है भक्ति का, जो भक्ति के जो टॉप मोस्ट डिवोशनल सर्विस है उसको किस प्रकार से खंडन किया जा सके उसका, है ना, लॉजिक के माध्यम से, उन सब के बारे में मेंशन था उसमें। तो जब यज्ञ मूर्ति आए तो यज्ञ मूर्ति ने सुना नाम रामानुजाचार्य का, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस व्यक्ति को हराता हूं तो नेचुरली क्या होगा, बाकी सभी लोग भक्त बन, बाकी सारे लोग अपने आप मायावाद बन जाएंगे, सबको बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो व्यक्ति है यज्ञ मूर्ति, ये आया रामानुजाचार्य के पास और इसने क्या बोला कि आप मेरे साथ तर्क करो और तर्क के माध्यम से मुझे हराओ। अब जो वैष्णव है वो तर्क करने में कभी भी रुचि नहीं रखते किसी से। इसी प्रकार जब जीव गोस्वामी ने भी एक बार तर्क किया था तो रूप गोस्वामी ने उनको वृंदावन से बाहर निकाल दिया था कि अगर किसी को वृंदावन में रहना है और अगर वो इस स्वभाव के साथ, इस बिहेवियर के साथ रहता है तो उसका वृंदावन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो रामानुजाचार्य ने, जब यज्ञ मूर्ति ने बोला तो रामानुजाचार्य ने मना कर दिया कि अगर आप चाहते मैं हार मान लूं तो मैं वैसे ही हार मान लेता हूं, इससे आपके साथ तर्क करने का क्या जरूरत है, मैं वैसे ही हार मान लेता हूं। तो उन्होंने क्या किया, हार मानने के लिए स्वीकार हो गए, है ना। पर इसने क्या किया, जो जो यज्ञ मूर्ति था इसने उनको बोला रामानुजाचार्य को कि आपने हार तो मानी है पर आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी कि एक तो आपको मायावाद को स्वीकार करना पड़ेगा और दूसरा मायावाद का प्रचार करना पड़ेगा। अब हालांकि रामानुजाचार्य को अपने फेम की, यश की कुछ नहीं थी, है ना, ऐसा नहीं कि अपने यश के लिए वो लड़ रहे थे, अपने यश के लिए हराना चाहते थे किसी को। पर जब उन्होंने ये देखा कि मुझे मायावाद का स्वीकार करना पड़ेगा और मायावाद का प्रचार करना पड़ेगा तो उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया, वो तर्क के लिए तैयार हो गए, उस डिबेट के लिए तैयार हो गए। और जब डिबेट शुरू हुई तो बताया जाता है ये डिबेट 17 दिन तक चली, 17 दिन तक। और 17 दिन के बाद रामानुजाचार्य पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके थे, हार चुके थे। अब उनके पास कोई भी लॉजिक बचा नहीं था यज्ञ मूर्ति को हराने के लिए, क्योंकि वो इतना निपुण था, इतना एक्सपर्ट था ना? और रामानुजाचार्य अंदर से बहुत घबराए हुए थे, रो रहे थे, पर उनके रोने का कारण ये नहीं था कि मेरी हार हो गई है, उनके रोने का कारण ये था कि अगर मैं हार गया तो वैष्णविज्म हार जाएगा, मायावाद फैलेगा। और तो इस भाव के साथ वो वरदराज के पास गए, अपने भगवान के पास, और उन्होंने उनसे प्रार्थना करनी शुरू की। और जब प्रार्थना करनी शुरू की तो स्वयं वरदराज ने उनको एश्योरेंस दिया कि कल आप जाओ और निश्चित रूप से आप जीतोगे। तो जब भगवान ने एश्योरेंस दिया, देखिए बहुत बड़ी बात है अगर हम भगवान ने एश्योरेंस दिया और मान ले उस बात को, भगवान तो बहुत एश्योरेंस देते हैं तुम घबराओ मत, वो हृदय मान ही नहीं पाता। भगवान गीता में कितनी बार एश्योरेंस तो दे रहे हैं, है ना, मान लो हमारे को किसी से हम घबरा रहे हो और भगवान हमें एश्योरेंस देते हैं आप घबराओ मत, पर वो डाउट अंदर रहेगा अंदर ना। पर रामानुजाचार्य के अंदर किसी प्रकार का वो डाउट नहीं था, भगवान ने उन्हें एश्योरेंस दिया आप जीतोगे, निश्चित रूप से इसे अपने मन में बिठा कर वो चले गए, है ना। और उससे दोबारा 18वें दिन गए तर्क के लिए। और अब जब रामानुजाचार्य पहुंचे और यज्ञ मूर्ति ने रामानुजाचार्य को देखा तो रामानुजाचार्य के शरीर से कांति निकल रही थी, एफल्जेंट, इतने एफल्जेंट थे वो। और इस कांति को देखकर, है ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती के साथ थे तो चैतन्य महाप्रभु ने एक भी शब्द नहीं बोला था, केवल उनके शरीर की कांति को देखकर प्रकाशानंद ने हार मान ली थी कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। तो इसी प्रकार से रामानुजाचार्य के शरीर से जो कांति निकल रही थी वो देखकर यज्ञ मूर्ति ने अपने आप हार स्वीकार कर ली। वो 18वें दिन डिबेट हुआ ही नहीं, अपने आप उन्होंने हार स्वीकार कर ली और वो क्या हुए, वो भी वैष्णव बन गए, श्री वैष्णव बन गए। तो भगवान की कृष्ण की मर्सी से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है और भगवान की कृपा को समझा नहीं जा सकता, केवल भक्त ही भगवान को समझ पाते हैं, भगवान की कृपा को समझ पाते हैं। तो इसी प्रकार से जो वो यज्ञ मूर्ति था उसने क्या किया, शरणागत हुआ रामानुजाचार्य को और उसने रामानुजाचार्य से दीक्षा ली और उसने भी श्री वैष्णविज्म का प्रचार करना शुरू किया। तो रामानुजाचार्य के, लाइक जैसे बताया था, लाइक फादर लाइक सन, है ना, रामानुजाचार्य के कई ऐसे शिष्य थे जो बहुत ही रामानुजाचार्य के प्रति शरणागत थे। उनमें से एक बार रामानुजाचार्य ने अपने एक शिष्य को भेजा एक भक्त घर में, यज्ञेश उनका नाम था, रामाचार्य ने उनको भेजा कि आप जाओ यज्ञेश के घर में और उनको बोलो रामानुचार्य आपके घर में आ रहे हैं। तो सारे शिष्य गए यज्ञेश के पास और उन्होंने यज्ञेश को बताया कि रामानुचार्य कल आपके घर में आ रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। तो यज्ञेश बहुत खुश हुआ, है ना। नेचुरली किसी को भी पता लगेगा गुरु उसके घर में आ रहे हैं या हमें पता लगता है गुरु मंदिर में आ रहे हैं, है ना, तो बिल्कुल माहौल बदल जाता है। तो उसी प्रकार से क्या हुआ, उसके घर का माहौल बदल गया। यज्ञेश ने सब कुछ छोड़कर गुरु के स्वागत की तैयारी करनी शुरू की और सारे शिष्य अब वापस पहुंचे रामानुचार्य के पास। रामानुचार्य ने पूछा कि क्या आपने उनको इन्फॉर्मेशन दिया? तो शिष्य ने बोला हाँ हमने उनको इन्फॉर्मेशन दिया कि कल आप आ रहे हैं। तो रामानुचार्य ने बोला उन्होंने रिएक्ट कैसे किया? कह रहे वो बहुत खुश हुए, उन्होंने तैयारी करनी शुरू की। अच्छा उन्होंने आपकी कोई सेवा की? तो उन्होंने बोला नहीं हमारी तो कोई सेवा नहीं की। तो रामानुचार्य ने कहा कि ठीक है हम उनके घर नहीं जाएंगे फिर, अगर उन्होंने मेरे भक्तों की सेवा नहीं की तो मेरी सेवा क्या करेंगे वो, है ना। तो रामाचार्य ने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और क्या किया, इसके बदले वो सारे पहुंचे अपने एक दूसरे भक्त के घर में जिनका नाम था भरद्वाज। और वो भरद्वाज के घर में, भरद्वाज आचार्य के घर में पहुंचे और उन्होंने घर जाकर नॉक किया। तो नॉक किया तो दरवाजा काफी देर तक खुला नहीं। क्यों क्यों नहीं खुला? क्योंकि ये जो भरद्वाज थे बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे कि इनके घर में कोई बर्तन नहीं था, इनके घर की जो छत थी वो छत नहीं थी, है ना, वो ओपन रूफ थी बिल्कुल, कुछ नहीं था उसके ऊपर। और इनके घर में केवल एक कपड़ा था, एक कपड़ा था बांधने वाला। जब भरद्वाज बाहर जाते थे तो जो पत्नी घर में है उनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं होता था, और जब पत्नी बाहर जाती थी तो भरद्वाज के पास, मतलब इतने गरीब थे वो, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था कोई। तो रामानुचार्य अपने सभी शिष्यों के साथ पहुंचे उनके घर में प्रसाद के लिए, है ना। उन्होंने दरवाजा नॉक किया तो रामाचार्य समझ गए, उन्होंने कपड़ा दिया और फिर जो उनकी पत्नी है लक्ष्मी वो कपड़े को पहनकर बाहर आई और उन्होंने बहुत आदर के साथ सभी वैष्णवों को, रामाचार्य को अपने गुरु को बिठाया, उनके पैर धोए, उनकी सेवा की सभी वैष्णवों की। और जब सेवा की तो क्योंकि लक्ष्मी की इच्छा थी उनको प्रसाद खिलाए और रामाचार्य भी प्रसाद पाने के लिए ही आए थे, तो लक्ष्मी ने सोचा कि मैं क्या करूं, मतलब क्योंकि उनके घर में ढूंढने से भी एक चावल का दाना नहीं मिलता था, इतने गरीब थे वो लोग। पर लक्ष्मी ने सोचा कि एक यहाँ पर एक मर्चेंट है, एक वैश्य है जो हमेशा मुझ पर बुरी नजर रखता है। तो लक्ष्मी ने क्या किया, उसके पास गई और उसको बोला कि आपकी जो भी इच्छा है मैं उस वह को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, है ना, पर आप क्या करो, मेरे गुरु और वैष्णव घर में आए हैं, उनकी मैं सेवा करना चाहती हूं और मुझे उसके लिए राशन चाहिए, सामान चाहिए, आप मुझे वो सामान दे दो और फिर मेरे जब गुरु चले जाएंगे फिर मैं आपके पास आऊंगी और आपकी जो इच्छा है मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। तो उसने क्या किया, उस वैश्य बहुत खुश हुआ क्योंकि वो भी यही चाहता था, उसने बहुत सारा राशन का सामान, बहुत ही ऑपुलेंट फीस्ट का सामान सारा भिजवाया भरद्वाज के घर पे। और लक्ष्मी ने बहुत बढ़िया फीस्ट प्रिपरेशन की और सभी रामानुचार्य और सभी वैष्णव को खिलाया। तो जब ये फीस चल रही थी, प्रसाद चल रहा था, तो उस समय भारद्वाज भी आ गए बाहर से और जब उन्होंने देखा गुरु को, उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, वैष्णवों को प्रणाम किया और वो हैरान हुए ये देख के कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, ये इतनी बड़ी फीस कैसे हो रही है। तो भारद्वाज ने पूछा अपनी पत्नी से ये इतनी बड़ी फीस कैसे हुई, तो उनकी पत्नी ने सब कुछ बताया, सब कुछ कि इस प्रकार से मैंने अपने सतीत्व को त्याग कर, मैंने क्योंकि गुरु की सेवा करनी थी तो मैंने अपने सतीत्व को भी त्यागा और मैंने उस वैश्य के पास आके उसकी जो इच्छा थी उसको मानने के लिए तैयार हुआ। तो उस बात से भरद्वाज घबराए नहीं, दुखी नहीं हुए, है ना, भरद्वाज बहुत खुश हुए और अपने आप को धन्य मान रहे थे कि उनकी ऐसी पत्नी है, ऐसी उनकी पत्नी है जो गुरु की सेवा करने के लिए, वैष्णवों की सेवा करने के लिए अपने आप को बेचने के लिए तैयार है। तो जब ये कन्वर्सेशन चल रहा था दोनों के बीच में तो रामानुचार्य भी सुन रहे थे इसको। तो रामानुचार्य ने क्या किया, जब लक्ष्मी रात को उनके घर जा रही थी उस वैश्य घर में, तो अपना महाप्रसाद दिया रामानुचार्य ने कि उस वैश्य को ये खिला देना, ये वैश्य आप जा रहे हो उसके पास, उस वैश्य को ये प्रसाद भी दे देना। तो जब वो वैश्य के पास पहुंची लक्ष्मी, तो लक्ष्मी ने क्या किया, वो प्रसाद दिया उस वैश्य को और उसने क्या किया, उस प्रसाद का ग्रहण किया। और जैसे ही उस प्रसाद को ग्रहण किया, अभी पूरा नहीं ग्रहण किया था, केवल अपनी जीवा से अभी टच किया था सिर्फ, वो जीवा से छूने मात्र से एक वैष्णव के महाप्रसाद को उसका हृदय इतना बदल गया कि वो लक्ष्मी के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। और फिर उसने प्रार्थना की कि मुझे भी अपने गुरु के पास लेके जाओ, मैं भी आपके गुरु के दर्शन करना चाहता हूं और उनसे दीक्षा लेना चाहता हूं। और उसके बाद वो जो वैश्य था वो भी रामानुचार्य का शिष्य बन गया। तो रामानुचार्य के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं, और जिसमें रामानुचार्य ने, क्योंकि एक जो असली आचार्य हैं उनका लक्षण यही होता है कि आचार्य अपने सेल्फिश मोटिव के बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, अपने लिए सेल्फिश नहीं होते। तो एक बार जो उनके गुरु थे, है ना, क्योंकि जब यमुनाचार्य ने शरीर छोड़ा था तो रामानुचार्य तो दीक्षा लेना चाहते थे यमुनाचार्य से। तो अब रामानुचार्य ने ऐसा नहीं किया कि यमुनाचार्य ने शरीर छोड़ दिया है तो यमुनाचार्य की फोटो के सामने बैठ के दीक्षा ले लूं, है ना। तो ये ऋत्विक प्रणाली वहां पर ऐसे नहीं चलती। तो यमुनाचार्य, क्योंकि हमें एक व्यक्ति चाहिए, है ना, तो यमुनाचार्य ने क्या किया, एक वैष्णव थे महापूर्ण, है ना, बाकी भक्तों ने भी सजेस्ट किया कि आप इनसे दीक्षा लीजिए। तो उन्होंने महापूर्ण नामक उन भक्त से दीक्षा ली, और जब महापूर्ण से दीक्षा ली तो महापूर्ण ने उनको बोला कि एक बहुत ही अच्छे वैष्णव है गोष्ठीपूर्ण, आप उनके पास जाइए और उनसे शिक्षा लीजिए, वो आपको कुछ ऐसे मंत्र देंगे जो बहुत सीक्रेट है जिससे आप बहुत जल्दी भक्ति कर सकते हैं। तो रामानुचार्य बहुत खुश हुए, है ना। अब देखिए, कुछ सीक्रेट जानने के लिए मिल रहा है भक्ति का। कभी कभी हमारे जीवन होता है ना, भक्ति अटक जाती है, आगे चल ही नहीं रही होती, मूवी नहीं कर रही होती, और कुछ सीक्रेट जानने के लिए मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। तो रामानुचार्य गोष्ठीपूर्ण के पास पहुंचे और गोष्ठीपूर्ण ने उनको अपने पास बिठाया, उनको बताया कि मैं जो आपको मंत्र देने जा रहा हूं ये बहुत ही गुह्य है, इसे किसी को मत बताना, इस मंत्र का जप करने मात्र से किसी को भी भक्ति प्राप्त हो सकती है, कोई भी भौतिक संसार के बंधन से छूट सकता है। तो रामाचार्य ने बोला ठीक है। तो रामाचार्य ने जब ये मंत्र सुन लिया पूरा, तो मंत्र सुनने के बाद गुरु ने क्या बोला था, किसी को भी मंत्र नहीं बताना। रामाचार्य ने क्या किया, गए और उस स्थान की जो सबसे ऊंची इमारत थी वहां पर जाकर उसके ऊपर खड़े होकर जोर जोर से उस मंत्र को बोलने लगे। अब ये बात पहुंची गोष्ठीपूर्ण के पास, और गोष्ठीपूर्ण ने रामाचार्य को बुलाया कि आपने क्या किया, ये आपने ऐसा क्यों किया, मैंने आपको बोला था ये सीक्रेट मंत्र है, किसी को देना नहीं, और आप ऐसे पब्लिकली इसको अनाउंस कर रहे हैं। तो रामानुचार्य ने क्या बोला, नहीं महाप उनको गोष्ठीपूर्ण ने बोला कि अगर आप इसको ऐसे प्रनाउंस करोगे पब्लिकली तो आपको नरक में जाना पड़ेगा उसको लेके। तो रामानुचार्य ने क्या बोला कि अगर ये मंत्र लेने से, सुनने मात्र से किसी को भक्ति प्राप्त हो सकती है, और अगर मंत्र के मेरे उच्चारण करने से मैं नरक में जाऊंगा तो मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं, पर अगर इससे कई लोगों का भला होता है, इससे कई लोगों को भक्ति प्राप्त होती है मेरे नरक में जाने से, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो यही वैष्णव आचार्य इसी प्रकार से होते हैं, जो अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के प्रचार के बारे में, दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं। तो रामाचार्य के एक शिष्य थे जो ब्राह्मण परिवार से थे, और वो रामानुचार्य के पास आए और रामानुचार्य को उन्होंने निवेदन किया कि मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो रामानुचार्य ने बोला ठीक है, आप मेरे से शिक्षा लेना चाहते हैं, अगर आप मेरे शिष्य बनना चाहते हैं तो आपको मेरी एक सेवा करनी पड़ेगी। तो ब्राह्मण ने बोला ठीक है, आप जो सेवा बोलेंगे गुरु जी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो रामानुचार्य ने क्या बोला, आपको क्या करना है, रोज अपने पैरों को धोना है, एक मटके में डालना है उस पानी को और मेरे पास लेके आना है, है ना, मैं उस पानी को पीऊंगा। तो एक शिष्य जब गुरु को ऐसा आदेश दे दें तो वो शिष्य क्या करेगा, तो वो ब्राह्मण घबरा गया, पर गुरु का आदेश था, पालन तो करना ही था। तो ये ब्राह्मण क्या करता था, अपने पैर धोता था, एक मटके में डालता था उस पानी को और रामाचार्य के पास रोज लेके आता था, और जब तक रामाचार्य को वो देता नहीं था मटका, तब तक कुछ खाता नहीं था। तो एक बार रामानुचार्य, जैसे भक्तों को जब प्रचार करते हैं तो समय का कुछ रहता नहीं, कभी कभी लेट भी आते हैं, तो रामानुचार्य इसी प्रकार से प्रचार कर रहे थे, और प्रचार करते हुए एक बार आधी रात तक रामानुचार्य वापस नहीं आए, और आधी रात को जब वापस आए रामानुचार्य तो उन्हें क्या देखा, मठ में हर कोई सो रहा है, केवल एक व्यक्ति जाग रहा है, कौन, वो ब्राह्मण। और जब रामानुचार्य ने उनसे पूछा कि आप अभी तक क्यों जाग रहे हो, आप सोए क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव जब तक मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा तब तक मैं कैसे सो सकता हूं। तो उसने मटकी का, जो पानी का भरा हुआ मटका, रामानुचार्य के हाथ में दिया, और रामानुचार्य ने क्या किया, उस मटकी को तोड़ दिया। तो ये जिस प्रकार के गुरु होते हैं दरअसल उसी प्रकार के भक्त भी होते हैं, उनके शिष्य भी होते हैं, क्योंकि गुरु के आचरण से ही सीखते हैं वो। तो एक भक्त थे जिनका नाम था गोविंद दास, और उनका एक बहुत ही विचित्र सा शिष्य था, अजीब सा शिष्य था, और जितना भी वैष्णव समाज था, जितने भी लोग थे, सब उसकी निंदा करते थे, क्यों निंदा करते थे? क्योंकि शास्त्र में बताया गया कि जिस बिस्तर पे आपके गुरु सोए, अगर आप उस बिस्तर पे सोते हैं तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। पर ये भक्त क्या करता था, गुरु के लिए बिस्तर तैयार करता था और उस पर आराम से लेट जाता था और फिर उठता था और फिर अपने काम में लग जाता था। तो किसी हर वैष्णव उनकी निंदा करता था। और जब रामानुचार्य ने बात सुनी तो रामानुचार्य को भी अच्छा नहीं लगा, उनको समझ नहीं आई ये बात, है ना। तो रामानुचार्य ने, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं सीधा कि ऐसा ही हुआ होगा, है ना। तो रामानुचार्य ने सोचा कि इस भक्त से बात तो करें कि ऐसा करता क्यों है ये। तो इस भक्त के पास गए और रामानुचार्य ने उनसे पूछा कि भाई शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आप गुरु के बिस्तर पर सोते हो तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, तो आप ऐसा क्यों करते हो? तो उस शिष्य ने क्या बोला कि देखिए, हमें अपने गुरु को हर प्रकार की सुविधा देनी चाहिए। अगर हम उनको कोई सोने का स्थान दे रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि वो कंफर्टेबल हो। तो जब तक मैं उस पर लेट के देखूंगा ही नहीं कंफर्टेबल है या नहीं, तब तक मुझे कैसे पता लगेगा? हमें नहीं ऐसा करना चाहिए। पर जब रामानुचार्य ने ये भाव देखा उस भक्त का, तो रामानुचार्य समझ गए कि इस भक्त का भाव भोगने का नहीं है। ये भोगना नहीं चाहता गुरु को, ये क्या कर चाहता है, गुरु की मैं अच्छे से सेवा कर सकूं। एक बार यही भक्त दोबारा उन्होंने देखा कि एक सांप के, एक कोबरा के मुंह में हाथ डाल रहे थे। तो उस भक्त को बिल्कुल, रामाचार्य को बिल्कुल समझ नहीं आया। रामाचार्य ने भक्त को बुला के दोबारा पूछना चाहा कि पूछो तो सही, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो रामाचार्य ने बोला, देखो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, एक तो आप उस सांप के मुंह में हाथ डाल रहे हो, आपको काट सकता है, आप मर सकते हो, और दूसरा क्या है, आपके हाथ डालने मात्र से इस सांप को कष्ट पहुंच रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उस भक्त ने क्या बोला कि दरअसल ये जो सांप है, ये फल को पूरा से निगल गया है और उसके गले में फंस गया है, और ये सांप बहुत समय से कष्ट भोग रहा है क्योंकि उसको अंदर नहीं जा रहा वो। तो मैं हाथ डाल के इस फल को निकालना चाहता हूं बाहर ताकि ये कष्ट से मुक्त हो जाए। मेरे को काट ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये कष्ट से मुक्त हो जाए। तो जब रामानुचार्य ने ये सुनी बात, उनको समझ आया कि ठीक है, ये जो भक्त हैं, ये कोई, इनकी जो चेतना है कोई ऑर्डिनरी चेतना नहीं है। तो एक जो भक्त है ना, जो डिवोटिस हैं, वो केवल एक्टिविटीज देख के जज नहीं करते कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कारण है इसके पीछे ऐसे एक्ट कर रहा है। और रामानुचार्य के एक शिष्य थे, एक बार खाल से उनका नाम कुरेश था, एक बार उनको एक राजा ने पकड़ लिया। वो राजा शिवजी का भक्त था ना, और जब उस राजा ने पकड़ लिया उनको, तो दरअसल उन शिष्य को पकड़ने से पहले वो जो राजा था वो क्या चाहता था कि रामानुचार्य को पकड़े, क्योंकि वो रामानुचार्य को वैष्णव बनाना चाहता, शिव का भक्त बनाना चाहता था। और भक्तों को पता था कि इस प्रकार से राजा ने सेना भेजी है रामानुचार्य को पकड़ने के लिए। तो इस भक्त ने क्या किया, रामानुचार्य से निवेदन किया कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूं और आप संन्यास में हैं, मैं, क्योंकि आपका जीवन बहुत अनमोल है, क्योंकि आप बहुत प्रचार कर रहे हैं वैष्णविज्म को, तो हम क्या करते हैं, अपने कपड़ों को इंटरचेंज कर लेते हैं, है ना। तो इस भक्त ने क्या किया, इसने रामानुचार्य के कपड़े पहन लिए और रामानुचार्य ने सफेद कपड़े उन भक्त के पहन लिए। तो अब जब पहुंचे, उस राजा ने पकड़ के ले गए दोनों को, तो राजा ने क्या किया, जो सफेद कपड़े में कौन थे, रामानुजाचार्य सफेद कपड़े में थे, तो उन्होंने अपने शिष्य के कपड़े पहने थे, तो उन्होंने क्या किया, रामानुचार्य को छोड़ दिया, है ना, उनको भेज दिया कहीं जंगल में दूर छोड़ दिया। और ये जो भक्त थे जिनको वो रामानुचार्य समझ आता, इनकी दोनों आंखें उसने फोड़ दी। अब ये भक्त थे दोनों आंखों से अंधे हो गए थे, है ना, इनको कुछ नजर नहीं आता था, पर फिर भी ये भक्त रोज वरदराज जी के मंदिर में जाते थे और उनके सामने कीर्तन करते थे, भजन करते थे, और उनका भजन कीर्तन इतना स्वीट, इतना मेलेडियस होता था, इतना भक्ति से भरा हुआ था कि स्वयं भगवान को वरदराज जी दर्शन देते थे रोज और उनसे पूछते थे, इज देयर एनीथिंग यू वॉन्ट, क्या आपको कुछ चाहिए? तो ये भक्त क्या बोलते थे कि वो जो राजा थे और राजा के शिष्य थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत टॉर्चर किया था, है ना, मेरी उन्होंने दोनों आंखों को ना, मुझे दोनों आंखों से अंधा कर दिया है, तो उन्होंने मेरे साथ इतना टॉर्चर किया है, मैं चाहता नहीं उनके जीवन में कोई कष्ट आए, तो आप उनको माफ कर दो। फिर दोबारा जब वो भजन करते थे, दोबारा फिर भगवान उनके सामने आते थे, उनको बोलते थे कि आपको कुछ चाहिए, तो फिर वरदराज को लगता था कि ठीक है, एक बार पहले किसी भक्त ने मेरे साथ गलत किया था, फिर भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि आपको कुछ ये भक्त ने पहले मेरे साथ गलत किया था, तो मैं चाहता नहीं इसको रिएक्शंस भोगने पड़े भविष्य में, तो आप इसको क्षमा कर दो। तो जब इस प्रकार से चलता गया और रामानुजाचार्य भी वहां पर पहुंचे एक बार, और रामानुजाचार्य ने देखा अपने भक्त की इस कंडीशन को, तो उन्होंने इस भक्त को बोला कि देखो ये शरीर जो आपका है, ये दरअसल शरीर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी संपत्ति नहीं है, ये मेरी संपत्ति है, क्योंकि आप में से हम अपने शरीर को गुरु को देते हैं, तो क्योंकि आपका शरीर पूर्ण नहीं है गुरु की सेवा करने के लिए, तो क्यों नहीं आप भगवान से ऐसा कुछ मांगते कि जिससे आपका शरीर पूर्ण हो जाए, ताकि अपने गुरु की सेवा अच्छी तरीके से कर सको। तो रामानुजाचार्य के अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए जब अब भगवान उनको दर्शन दिए, तो इस भक्त ने बहुत ही विनम्र भाव से भगवान की प्रार्थना करते हुए भगवान को बोला कि ये जो शरीर है मेरा शरीर, ये गुरु की संपत्ति है, और मैं पूरी तरीके से गुरु की सेवा में नहीं लगा पा रहा, क्योंकि मैं आंखों से देख नहीं सकता, तो आप इस शरीर को आप ठीक कर दो, ताकि मैं गुरु की सेवा कर सकूं। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट से, इस कथा से, हम स्टोरी से ये सीख सकते हैं कि हमें निर्ममा की स्थिति पे होना चाहिए। नथिंग इज माइंड, मेरा अपना कुछ नहीं है, ये जो शरीर भी हमारा है दरअसल ये हमारा नहीं है, ये शरीर किसका है, भगवान का दिया हुआ है, गुरु का है, और इसे हमें गुरु की ही सेवा में लगाना है। तो इसी प्रकार से दो छोटे से और इंसिडेंट लेके मैं खत्म करूंगा। एक बार ये स्टोरी आपने सुनी होगी, रामानुजाचार्य के नेफ्यू थे और रामानुजाचार्य के शिष्य थे दशरथी। ये दशरथी बहुत ही उन्नत भक्त थे और शास्त्रों का इनको बहुत ज्ञान था, और दशरथी पहुंचे एक बार रामानुजाचार्य के पास और उनसे निवेदन करते हैं कि मुझे ये श्लोक का मतलब समझाओ, सर्वधर्मान परित्याज्य। तो रामानुजाचार्य ने उनको क्या बोला कि मैं आपको ये श्लोक समझाऊंगा, पर आप क्या करो, एक भक्त है गोष्ठीपूर्ण, उनकी सेवा करो, मैं चाहता हूं कि पहले आप ये श्लोक उनसे समझो। तो ये भक्त गए गोष्ठीपूर्ण के पास, 6 महीने तक उनकी सेवा की है ना, और बहुत ही भक्ति भाव से पूरे हृदय से उनकी सेवा की। 6 महीने के बाद गोष्ठीपूर्ण ने उनको कुछ भी समझाने के लिए मना कर दिया कि मैं आपको कुछ नहीं समझा पाऊंगा, आप अपने गुरु से ही समझो ये चीज, इस श्लोक का मतलब आपने गुरु से ही समझो, और आपके गुरु ही आपको बता पाएंगे। और साथ में उनको यह बताया गोष्ठीपूर्ण ने कि जब भी हमारे अंदर कोई ज्ञान होता है, तो ज्ञान के आधार पर क्या होता है, हमारा अहंकार भी बढ़ता है साथ में, तो इस अहंकार से भी हमें बचना चाहिए। तो दशरथ ही पहुंचे रामानुजाचार्य के पास और रामानुजाचार्य को पूरी उन्होंने बताया कि इस प्रकार से मैंने सेवा की, अब गोष्ठीपूर्ण जी ने बोला है कि मैं आपसे जाके सीखूं। तो जब ये बातचीत चल रही थी, तो उस समय जो उनके गुरु थे महापूर्ण रामानुजाचार्य के, उनकी पुत्री रामानुजाचार्य के पास पहुंची और बहुत रो रही थी। उसने रोते हुए बोला कि देखो मेरे जिस घर में मेरा विवाह हुआ है, ये लोग मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं, क्योंकि मुझे मेरा पूरा दिन बीत जाता है घर से कुएं तक पानी लाने के लिए, घर से नदी तक पानी लाने के लिए, और पूरा दिन मेरा बीत जाता है ये पानी ही लाने में, और मेरा शरीर इतना एग्जॉस्ट हो चुका है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, और जब इस दयनीय स्थिति में, इस तकलीफ की स्थिति में मैं अपनी सास के पास जाती हूँ, उनको बोलती हूँ कि मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे सहायता चाहिए, तो आप मेरे को कोई व्यक्ति दे दो ताकि मेरी सहायता कर सके, तो मेरी सास मुझे बोलती है कि अगर सहायता चाहिए तो अपने पिता के घर से खुद ले आओ। तो इसलिए मैं अपने पिता के पास गई थी महापूर्ण जी के पास, और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, तो आप मुझे बताइए मैं कैसे, मुझे कोई समाधान बताइए। तो रामानुजाचार्य ने क्या बोला, आप घबराइए मत, ये व्यक्ति आपके साथ जाएगा, दशरथी आपकी सेवा करेगा। तो दशरथी उस समय उनके पास ही आए थे, तो दशरथी जो इतने ज्ञानवान थे हर प्रकार के शास्त्र में, रामानुजाचार्य ने उनको कहां भेजा, उन माता जी के साथ भेजा कि जाओ आप इनके घर में सेवा करो। अब दशरथी क्या करते थे, उनके घर में पानी भर के लाते थे, कुकिंग करते थे, घर की सफाई करते थे, जितने लोग काम होते हैं है ना, सारे ऐसे काम किए करते थे। तो एक बार उस गांव में एक वैष्णव आया, और वो वैष्णव कुछ कथा कर रहे थे, पर उनकी कथा में इम्पर्सनलिज्म था, और जब दशरथी को, जब उन्होंने सुना, क्योंकि वो शास्त्रों के ज्ञाता थे, जब उन्होंने सुना तो उन्होंने करेक्ट किया उस वैष्णव को कि जो आप बोल रहे हो ये गलत है। अब जब उस वैष्णव ने बात सुनी तो उसको क्रोध आया, उन्होंने बोला कि आप घर में झाड़ू मारने वाले, पानी भर के लाने वाले, आपका अधिकार क्या बनता है, जो कर सकते हो वो काम करो है ना, मुझे शास्त्र मत सिखाओ, और अगर शास्त्र की इतना ज्ञाता हो तो बोलो इसके बारे में तुम्हारा क्या मत है। तो जब दशरथी ने बात सुनी तो दशरथी ने बोलना शुरू किया है ना, अब जब दशरथी ने बोलना शुरू किया तो इतने बड़े ज्ञाता थे, उनके ज्ञान के सामने वो वैष्णव ने क्या किया, घुटने टेक दिए, उनसे माफी मांगी। और जब बाकी गांव वाले जो वहां पर खड़े थे उन्होंने देखा कि ये इतना ज्ञानवान व्यक्ति इस घर में आकर ये छोटा मीनियल काम कर रहा है, तो उसको गांव वालों को पसंद नहीं आया। वो सारे के सारे गए रामानुजाचार्य के पास पहुंचे और रामानुजाचार्य से प्रार्थना करने लगे कि आपके शिष्य दशरथी इतने उन्नत भक्त हैं, इतने शास्त्रों की ज्ञाता हैं, इतने विनम्र हैं, है ना, आपने क्या छोटा काम उनको दिया हुआ है करने के लिए। अब जब रामानुजाचार्य ने बात सुनी तो उनको समझ आ गया कि ठीक है, अब मेरा शिष्य सही पोजीशन में पहुंच चुका है कि वो कुछ सुन पाएगा, अब वो विनम्र बन चुका है। इसके बाद रामानुजाचार्य ने दशरथी को बुलाया और उनको ये श्लोक समझाया, सर्वधर्मान परित्याज्य। हम तो अगर जाते, अगर सीनियर के पास एक बार मना कर देता, दो बार मना कर देता तो गुस्सा आ जाता है कि यार टाइम नहीं देता। पर सोचिए कितने महीने तक वो ये करते रहे ना। तो एक बार दिल्ली के एक सुल्तान थे, उन्होंने एक विष्णु भगवान के विग्रह थे सुंदर राज, उनको मालकोट से चुरा लिया। और जब चुरा लिया उन विग्रह को, तो रामानुजाचार्य को पता लगा कि विग्रह चोरी हो गए हैं। तो रामानुजाचार्य दिल्ली में पहुंचे अपने 6000 शिष्यों के साथ, और 6000, अब 6000 शिष्यों के साथ कोई आएगा तो किसी को भी डर लगेगा। तो 6000 शिष्यों के साथ पहुंचे और उनके घर में प्रवेश किया। जब उनके घर में पहुंचे तो उस व्यक्ति ने, वो तैयार हो गया कि ठीक है मैं आपके विग्रह आपको दे दूंगा। पर उस मुसलमान राजा ने बोला कि देखो मैं आपके विग्रह तो आपको दे दूंगा, पर मेरे को पता ही नहीं आपके हैं कौन से, मैंने कई हजारों चुराए हैं, वो गोडाउन में पड़े हैं, आपको चाहिए तो ले लो आप। तो जब वो देखने गए रामानुजाचार्य तो उनको विग्रह मिले नहीं, तो ढूंढने गए विग्रह को, तो उनको पता लगा कि जो राजा की पुत्री है वो एक विग्रह से खेलती है खिलौने के रूप में। तो वो जो विग्रह थे वो कौन से थे, सुंदर राज्य के विग्रह थे। अब जब रामाचार्य ने सुंदर राज्य के विग्रह मांगे तो वो राज, जो राजकुमारी थी वो भी देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। तो अब वो मुसलमान राजा के पास पहुंचे कि बताओ क्या करना है, आपकी पुत्री देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मुसलमान राजा ने बोला कि अगर आपके भगवान है आप बुलाओ, आ जाएंगे, है ना। तो रामाचार्य ने क्या किया, सुंदर राज्य को बुलाया, है ना। तो सुंदर राज क्या है, उस राजकुमारी के हाथ से निकल के अपने आप ही रामाचार्य की गोद में आ गए। तो ये वैष्णवों का, भक्तों का और भगवान का संबंध है आपस में, ये उनका रिलेशन है। तो रामानुजाचार्य बहुत ही उन्नत कोटि के वैष्णव हैं, आचार्य हैं, और श्री संप्रदाय के मुख्यतः रूप से आचार्य हैं। और वर्शिप को लेकर, अर्चा विग्रह को लेकर उन्होंने बहुत ही सुंदर नियम बताए हैं कि अगर हम विग्रह की सेवा करना चाहते हैं तो उसके 5 नियम हैं, शुरू से आखिर तक 5 चीजों में हम अपनी पूरी वर्शिप को बांट सकते हैं। पहला पार्ट क्या है उसका, अभिगमन। कभी कभी हमारे को वर्शिप का मतलब लगता है पूजा का मतलब, जो हम घंटी बजाते हैं और आरती करते हैं ये पूजा है, पर पूजा ये नहीं है, पूजा सिर्फ एक पार्ट है बीच वाला। पहला पार्ट क्या है, अभिगमन। जो भी पूजा का स्थान है आपका उसको साफ सुथरा रखना, क्लीनिंग, उसकी सफाई रखना, उसको मेंटेन करना अच्छी तरीके से, अभिगमन। दूसरा पार्ट क्या है इसका, उपदान। उपदान का मतलब क्या है, कलेक्टिंग द पैराफेर्नेलिया। जो भी चीजें जरूरत है आपकी सेवा करने के लिए, जैसे आपको फूल की जरूरत है, किसी आर्टिकल की जरूरत है, आपको चंदन की जरूरत है, है ना, घंटी या और किसी गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आपको जिस चीज की जरूरत है उस चीज को इकट्ठा करके रखना, क्योंकि वर्शिप के बीच में बार बार उठा नहीं जाता। तो पहला अभिगमन, दूसरा उपादान, तीसरा पार्ट है इज्जा। इज्जा का मतलब है ऑफरिंग वर्शिप टू लॉर्ड विष्णु, आप भगवान की सेवा करना। और इज्जा पे हमारी वर्शिप खत्म नहीं होती। कुछ लोगों को लगता है ठीक है हमने भगवान की सेवा कर ली सब कुछ हो गया, नहीं। चौथा पार्ट है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब अपने लिए अध्ययन करना, है ना, शास्त्र पढ़ना, जप करना, शास्त्रों की चर्चा करना, है ना, हरिनाम का जप करना, जानना भगवान कौन है, ये स्वाध्याय अपने बारे में, है ना। क्योंकि अगर हम अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, पर अपना श्रवण कीर्तन बहुत ढीला है, तो थोड़े समय में सेवा भी ढीली हो जाती है अपने आप। और पांचवा पार्ट है भगवत अनुसंधान, कल्टीवेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड। अपनी जो सेवा का भाव है उसको डेवलप करना। तो ये 5 पार्ट है इसके, वर्शिप के। और आज बहुत ही विशेष दिन है, आज श्रीपाद रामाचार्य का तिरुभाव दिवस है, और आज के दिन हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चल सके और वैष्णविज्म का प्रचार कर सके, है ना। क्योंकि रामाचार्य के जीवन में कभी कोई रिलैक्स स्थिति नहीं आई, हमेशा उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है प्रचार करने में, ना, दूसरों के भले के लिए अपना जीवन लगाया उन्होंने। और हमारा ये कर्तव्य है कि हम आचार्यों से प्रार्थना करें कि हम भी आचार्य बन सकें, हम भी ऐसा बिहेव कर सकें कि दूसरे लोग भी देख कर सीख सकें। एक बार 2004 में पंचशील में सोलिस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का लेक्चर हो रहा था, तो एक भक्त ने उनसे महाराज से पूछा कि महाराज क्या हम आचार्य बन सकते हैं। महाराज ने कहा हाँ हमें आचार्य बनना चाहिए पर फाउंडर आचार्य नहीं। आप फाउंडर आचार्य मत बनो, आप आचार्य बनो। हर भक्त का कर्तव्य वो आचार्य बने पर कुछ नया फाउंड मत करें, कुछ नया इन्वेंट ना करें। तो बहुत ही विशेष दिन है आज, रामानाचार्य का तिरुभाव दिवस है। हम रामानाचार्य से प्रार्थना करें कि हम उनके पदचिन्हों पर चल के हम भी हरिनाम का प्रचार कर सकें और वैष्णव की सेवा कर सकें। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, श्रीपाद रामानाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे।